శ్రీమద్భాగవతం 10/20/20 డేట్ 15 మార్చ్ 2015. స్పీకర్ గడు దాస్ ప్రభు.
ప్రత్యనందన అభినందన హేతు జిల్లా పడే శిఖండిన మోర్గణ గ్రహేషు అప్నే ఘరో మే తప్త దుఃఖిత నిర్వీణా ఔర్ తబ్ సుఖీ బన్తే హైన్ యథా జిస్ తరహ అచ్యుత భగవాన్ కే జన్ భక్తో కే ఆగమే ఆగమన్ పర్. అనువాద్ ఏవం తాత్పర్య కృష్ణ కృపా శ్రీమూర్తి ఏసీ భక్తిదాన్ జగద్గురు శ్రీ ప్రభుపాద్ మహారాజ్ కే శిష్యో ద్వారా. అనువాద్ ఇస్ ప్రకార్ హై. జబ్ మోరో నే బాదలో కో ఆతే దేఖా తో వే ఉత్సవ మనానే లగే ఔర్ హర్షయుక్త అభినందన్ మే చిల్లానే లగే. జిస్ తరహ గ్రస్త జీవన్ మే దుఃఖిత లోగ్ అచ్యుత భగవాన్ కే శుద్ధ భక్తో కే ఆగమన్ పర్ హర్షిత హోతే హై. తాత్పర్య శుష్క గ్రీష్మ ఋతు కే బాద్ ప్రథమ గర్జన్ కర్తే వర్షా కే బాదలో కే ఆగమన్ కే సాథ్ హీ మోర్ ప్రఫుల్లిత హో ఉఠతే హై ఔర్ పరమ సుఖ మే నాచతే లగతే హై. శ్రీ ప్రభుపాద్ కి టీకా హై. హమే ఇస్కా వ్యవహారిక అనుభవ హై కి కృష్ణ భావనామృత మే సమ్మిలిత హోనే కే పహలే హమారే బహుత్ సే శిష్య శుష్క ఔర్ ఖిన్న థే కింతు భక్తో కే సంపర్క మే ఆనే కే బాద్ వే అబ్ ప్రఫుల్లిత మోరో కి తరహ నాచ రహే హై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాజనశలాకయా చక్షురోన్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతే స్వయం రూప కదామయం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పద కమలం శ్రీ గురు నవష్ణవాంచ శ్రీ రూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితం చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతి గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగే రాధే వృషభాను సుతే దేవీ ప్రణమామి హరి వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధువైవ చ. పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది ఘోర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्णा। सभी भक्तों को खूब खूब धन्यवाद। श्लोक अनुसार तपे हुए ग्रस्त जीवन में से आप अपना समय निकालकर इस राधा गिरधारी मंदिर के प्रांगण में गिरधारी के समक्ष, जो कि हर संडे 3 बार भागवत कथा होती है, सुबह दोपहर और शाम को भगवत गीता होती है, तो सुबह का सत्र में आप सभी भक्तों का खूब खूब आभार धन्यवाद। बहुत सुंदर श्लोक है, वृंदावन का सुंदर सुखदेव गोस्वामी विस्तार से वर्णन करते हैं। वर्षा ऋतु का, अलग अलग ऋतु का वर्णन करते हुए, अभी गर्मी का सीजन चला गया, बारिश का सीजन आ गया है, लोग बहुत तपे हुए थे। अभी बारिश का सीजन आए हैं तो अनुवाद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब मोरे ने बादलों को आते देखा तो वे उत्सव मनाने लगे। मयूर जब बादल आकाश में बादल को देखते हैं तो अपना मनोरथ मनाते, नाचते हैं, गाते हैं। एक साल से इंतजार करते करते एक साल जब खत्म होता है तब बादल का उसको दर्शन होता है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि मेरे भक्त भी जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में गए तो उनके विदेशी शिष्य जो थे पहले बहुत खिन्न थे, आनंद ढूंढ रहे थे लेकिन आनंद की कोई प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए बहुत खिन्न थे और बेचैन थे। लेकिन उनके जीवन में जब कृष्ण भावना प्रकट हुई तब वही मोर की तरह नाचने लगे। विदेश में जब प्रभुपाद महाराज गए पहली बार तब अमेरिकी सरकार ने बहुत डॉलर, करोड़ों करोड़ डॉलर खर्चा करने के बाद भी किस लिए खर्चा कर रहे थे कि लोग नशे में डूबे हुए थे, बहुत सारे नशे कर रहे थे, तो उन अमेरिकी सरकार ने करोड़ों खर्चा किया कि लोग नशे से बचे। लेकिन फिर भी इतना खर्चा करने के बाद भी लोग बचे नहीं। लेकिन जब प्रभुपाद महाराज कृष्ण भावना लेकर गए विदेश में और वही नशे वाले लोग के हृदय में ये महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ये महामंत्र सुनाए और इतना परिवर्तन आ गए कि सभी जो रात दिन नशा कर रहे थे उन्होंने नशा छोड़कर कृष्ण भावना भावित अपना लिया, अपने जीवन को कृष्ण भावना में मई बना दिया। जब प्रभुपाद जी इस विदेशी शिष्यों को मिले तब वो नशा कर रहे थे, तब प्रभुपाद जी महाराज ने कहा कि आप क्यों नशा कर रहे हो, तब वो लोग बोलते हैं कि आनंद के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा आनंद ये नशा करने से कितने समय तक टिकता है, तो बोले 10-12 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा पड़ा रहते हैं और आनंद मिलता है। तो प्रभुपाद महाराज ने कहा कि ये जो आनंद है वो क्षणिक है, छूट जाने वाला आनंद है, लेकिन मैं ऐसे आपको नशा देता हूँ जो कभी भी मिटने वाला नहीं है। और तो वो तो चाहते थे, वो लोग आनंद की खोज में थे, वो लोग इसलिए तो नशा ड्रग्स वगैरह लेते थे। तो प्रभुपाद जी महाराज ने जब कहा तब उन्होंने स्वीकार किया, नहीं वो तो चाहते हैं, हमको चाहिए। तो प्रभुपाद महाराज ने बाद में उनको ये कृष्ण भावना भावित जो हरे कृष्ण महामंत्र है उनको दिया, हरे कृष्णा हरे 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 राम। तो सभी भक्त ये नशे में डूब गया, तो वो नशा छूट गया। तो अमेरिकी सरकार भी ताजुब हो गई कि इतना खर्चा करने के बाद भी है हमसे, हम उसको नशा से छुड़वाया नहीं सका। लेकिन ये हिंदुस्तान का ऐसा साधु है जिन्होंने बिना खर्चे से केवल भगवान का नाम से नशा को छुड़वा दिया। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी अपना अनुभव एक तात्पर्य में बताते हैं कि पहले ये लोग बहुत खिन्न थे, अधूरे थे, अशांत थे, लेकिन जब उनके जीवन में महामंत्र आया, भक्ति आया, तब वो मोर की तरह, मयूर की तरह नाचने लगा और गाने लगा। एक बार एक प्रभुपाद जी का नहीं पण एक सामान्य भक्त, एक सामान्य व्यक्ति, भक्त भी नहीं, कुछ छोटा मोटा अपराध किया और उसके पीछे पुलिस पड़ी और वो जा रहे थे तो विदेश में। तो विदेशी भक्त बहुत नाचते गाते झूमते हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते करते उसी समय निकले, हरे कृष्णा हरे राम राम। तो उसी समय वो जो वो गुनाह करके आया था वो व्यक्ति संकीर्तन मंडली में घुस गया। तो पुलिस देखने लगा कहाँ गया, वो मिल गया तो वो भी हरी बोल करने लगा। तो बाद में उसको वो आदमी मिला नहीं, पुलिस वापस घर पे चली गई अपना ऑफिस में। बाद में वो तो भक्त लोग तो अंत में तो मंदिर जाते हैं, तो मंदिर गया, वो भी साथ में गया। तो उधर का टेंपल कमांडर ने कहा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, सब बातचीत करने के बाद वो बोला अभी तो मैं किधर जा नहीं सकता हूँ, पीछे पुलिस है, इसलिए मैं भक्त ही बन जाता हूँ, तो मुझे क्या करना है। तो उसने बोला कि साढ़े तीन बजे उठना है, मंगल आरती करना है, चार नियमों का पालन करना है, ये सभी करना है। तो वो एग्री हो गया, ठीक है मैं करूँगा। तो बाद में मंदिर का प्रेसिडेंट को मालूम पड़ा, थोड़ा दिन के बाद, चार पांच महीने के बाद, कि वो ऐसा अपराध करके आए हुए हैं। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि भाई तूने अपराध किया है पुलिस का, तो पुलिस के खाते में वो तो रहता ही है, वो जीवन भर मिटता नहीं है। तू एक काम कर, अभी तो भक्त बन गया है, तू शरणागति ले ले, हैं तो तेरे को कुछ करेगा नहीं, बाद में आ जाना। तो प्रेसिडेंट का उन्होंने मान लिया और गए पुलिस स्टेशन में, जाके उन शरणागति स्वीकार कर लिया कि मैंने वो अपराध अमुक महीने पहले किया था, आप मेरे पीछे थे लेकिन मैं आपको मिला नहीं, लेकिन आज मैं आपको शरणागत होके कहता हूँ कि मैंने ऐसा ऐसा गुनाह किया है। तो अभी तक कहाँ थे जो उसका मैन साहब था, वो उन्होंने पूछा। तो बोला मैं मंदिर में था। तो क्या करता था? तो बोला 3 बजे उठता था और ठंडा पानी से नहाता था और चार नियम का पालन, किसी भी प्रकार का नशा नहीं, ये सब उन्होंने बताया। और खाने में अरे एकदम रूखा सूखा फीका, नहीं मसाला, नहीं तेल ऑयल, कुछ नहीं, ऐसे खाना पड़ता है। अच्छा ऐसा है? तो वो पुलिस साहब ने जो मैन था उन्होंने कहा कि तो तूने सजा काट ली, अभी तेरे को सजा देने की आवश्यकता नहीं है, जा तू भजन कर तेरा। तो इसी प्रकार उसको छोड़ दिया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहले ये लोग खिन्न थे, अधूरे थे, लेकिन कृष्ण भावना में आने के बाद वो एकदम आनंदित हो गए, उसको जो असली आनंद है वो प्राप्त हो गया। तो इसमें बताते हैं मयूर नाचते हैं। वास्तव में हम देखते हैं भगवान कृष्ण को क्या लगता है, मयूर पंख भगवान लगाते हैं, क्यों भगवान मयूर का ही पंख लगाते हैं, और बहुत सारे पक्षी है संसार में लेकिन मोर का ही पंख लगाते हैं, उसका कारण क्या है? एक तो वो भगवान का कलर, जो बादल का कलर है वो भगवान का मिलता जुलता कलर है, इसलिए वो बादल को प्रेम करते हैं, हैं घनश्याम से प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान उसको प्रेम करते हैं। दूसरा, उसके जीवन में काम वासना नहीं है, बिल्कुल निष्काम है। तो हम प्रश्न एक उठ सकता है, तो उसका ये विस्तार कहां से होता है? मयूर तो बहुत दिखाया जाता है। तो कहते हैं कि मयूर जब कला करते हैं तो उसके आंख में से कुछ आंसू गिरते हैं, तो मयूरी उसको ग्रहण करते हैं और उससे वो बच्चा उत्पन्न करता है, इसलिए उसके जीवन में काम वासना नहीं है। तो भगवान ये बताना चाहते हैं हम सबको कि जिनके जीवन में काम वासना नहीं है वो मुझे प्यारा है, हैं? उसको मैं ग्रहण करता हूं, इसलिए अपने साधु संत काम वासना से मुक्त रहते हैं, इसलिए भगवान को प्यारा बन जाते हैं। अर्जुन का रथ भगवान ने क्यों चलाया? क्योंकि वो इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले थे। अर्जुन का रथ इसलिए चलाया भगवान ने, कोई सामान्य ऐसा एड़ा पेड़ा आदमी नहीं था, वो भगवान के भक्त था और उसका इंद्रिय एकदम कंट्रोल में था। जब हम देखते हैं सुनते हैं महाभारत में कि जब पांडवों को वनवास मिला और बाद में अज्ञातवास भी मिला, उसी समय अर्जुन ने एक स्त्री वेश धारण कर लिया था, तो उसी समय विराट राजा की एक पुत्री थी उत्तरा, उनको उन्होंने नर्तन और कीर्तन सिखाया था एक शिक्षक के रूप में, और उसी समय वो अकेला ही था, फिर भी भक्त लोग कहते हैं कि फिर भी उसका इंद्रिय है वो कंट्रोल में रहा, इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेम करते हैं, इसलिए मयूर को भी भगवान प्रेम करते हैं। अभी श्लोक में आगे आते हैं कि ग्रहेषु सभी भक्त, जो ग्रह में रहने वाले, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसको कोई ना कोई दुख रहता है, तकलीफ में होता है, दुख रहता है, क्योंकि संसार दावा नलली ढलोक त्राणाय कारुण्य घना घनतम प्राप्तस्य कल्याण गुरुनावश्य वंदे गुरु ऋषि चरणारविंद। संसार है ये दुखमय है, इसमें भी गृहस्थ और भी कठिनाई, क्योंकि उसको बहुत सारे जिम्मेदारी रहता है, इसलिए गृहस्थ थोड़ा तपा हुआ रहता है, लेकिन उनमें भी दो प्रकार है, एक गृहस्थ और एक ग्रह मेधी। गृहस्थ उसको कहते हैं, गृहस्थ एक आश्रम है जो जिसका श्रम केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, उनको गृहस्थ आश्रमी कहा जाता है। और जो गृहस्थ और ग्रह मेधी किसको कहते हैं? ग्रह मेधी माने मैं और मोर, एक तो मैं हूं और मेरे ये परिवार है, उसके अलावा संसार में कुछ नहीं, केवल अपने को खुश करना, अपने को संतुष्ट करना, अपने को राजी करना और अपने परिवार को राजी करना, और अगल बगल में उसकी दृष्टि जाती ही नहीं है। उसका जीवन मात्र प फ ब भ म इसमें ही समाप्त हो जाता है। प माने परिश्रम, रात दिन मेहनत करता है, पैसा कमाता है, उल्टा सुल्टा है पाप करके भी कैसे भी करके पैसा लेके आते हैं, इतना परिश्रम करते हैं बार बार घंटा दस दस घंटा के, एकदम थकावट हो जाता है, मुंह में से फैन निकल जाता है, इतना मेहनत करता है परिवार चलाने के लिए, और दूसरा उसके पास कोई कार्य नहीं होता है,
और कोई अच्छा कार्य तो करता नहीं क्योंकि ग्रह मेदी है, इसलिए इतना मेहनत करता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं 500 साल तक जीने वाला हूं, 10-10 पीढ़ी का मैं ठीक करके जाऊं। एक व्यक्ति एक शेठ था, उसके पास एक साधु आया। साधु आया तो साधु ने ये शेठ को कहा कि शेठ जी आपके पास इतना धन है, 7-7 पीढ़ी खाएगा तो अभी खलास होने वाला नहीं है, फिर भी आप क्यों इतना मेहनत करते हो, भगवान का भजन करो। तो इतना सुनते ही वो शेठ बेहोश होकर गिर गए। अरे साधु तो घबरा गए कि मैंने ऐसा क्या किया को उसको मूर्छा आ गया, मैंने तो ऐसा कोई कहा नहीं, केवल भजन करने के लिए कहा। तब कैसा भी करके थोड़ा पानी का छटका मार के उसको कैसा भी करके उसको खड़ा किया। बाद में उसको पूछा कि हमने तो कुछ ज्यादा कहा नहीं आपको, केवल कहा कि 7-7 पीढ़ी का आपका हो गया, अभी क्यों मेहनत करते हो, केवल भगवान का भजन करो। तो वो बोला कि 7 पीढ़ी का तो है लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, इसलिए वो गिर गया था। उसको 8वीं पीढ़ी का चिंता था, बस 7 पीढ़ी का ही है, इसलिए वो गिर गया था। तो इसी प्रकार मुंह में फैन आ जाता है तब तक वो लोग मेहनत करते हैं। प फ और बाद में ब, क्योंकि ऐसा कमाते हैं उल्टा सुल्टा करके, इसलिए उनको बंधन पड़ता है, कर्म का बंधन, किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जो भी उल्टा सुल्टा कमाते हैं, किसी का लेकर देते ही नहीं है, या तो झूठम झूठ होता है या तो चीटिंग होता है, सभी का कर्म का बंधन लगता है और कर्म का बंधन भोगना पड़ता है। कर्म बंधन के लिए शरीर लेना पड़ेगा, इसलिए उसको बंधन लगता है। प फ ब और भ, बाद में जब वृद्धावस्था होती है तब सब जो कृत्य किया है सब याद आता है, क्योंकि बच्चे तो अभी कुछ पिताजी का कोई परवाह करता नहीं है, इसलिए वो सोचता है बैठे बैठे कि इतना सारा इतना मेहनत करके उल्टा सुल्टा करके कमाया, पर अभी लड़का तो सामने देखता भी नहीं, सेवा भी नहीं करता, कुछ बात भी नहीं करता है, तब भय होता है उसको, भयभीत हो जाता है, और भय होते 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 बीमार हो जाता है, पथारी में लेट जाता है, अंते म माने मृत्यु, हरि बोल हो जाता है, हरे कृष्णा राम राम। तो ये है ग्रह मेधी का स्थिति। लेकिन गृहस्थ जो भगवान के भक्त होते हैं, जो ग्रह मेधी होते हैं ना, इसमें अनुवाद में कहा गया है कि जब गृहस्थ के वहां कोई भक्त जाता है तो क्या होता है, उसको आनंदित हो जाता है, क्योंकि भगवान का भक्त आया, हमको कुछ उपदेश देंगे, हमारा घर पावन हो जाएगा, यही भावना से वो आनंदित होते हैं, नाचते हैं गाते हैं। लेकिन जो ग्रह मेधी होता है उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो तो वही सोचता है, क्योंकि व्यापारी माइंड है ना, कुछ लेने के लिए आया होगा, इसलिए समझ लो कोई भक्त ने बेल मार दिया तो थोड़ा देख लेते हैं खुल के, बाद में बड़िंग से दरवाजा बंद करता है। लेकिन वो भूल रहे हैं कि वो अपना घर का दरवाजा नहीं, लेकिन अपना किस्मत का जो भाग्य का दरवाजा उसने बंद कर दिया। क्योंकि भक्त जो होते हैं वो कुछ लेने के लिए नहीं, वो देने के लिए आते हैं, कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति देने के लिए आते हैं। इसलिए जो ग्रह मेधी है उनमें कोई भक्त के प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं होता है। जिस प्रकार दुर्योधन ने, विदुर जी महान संत थे, भक्त थे, तीर्थान कुर्वंती तीर्थानी, जो तीर्थों को पवित्र करने वाले, तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले, पवित्र बनाने वाले, ऐसे महान भागवत भक्त थे विदुर जी। लेकिन दुर्योधन उनको समझ नहीं पाया, इसलिए उनको बहुत खराब शब्द कहने लगा कि आप पांडु का पक्ष लेते हैं, इसलिए भाग जाओ इधर से, नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे कोई साधु संत वैष्णव का चरणों में अपराध होता है तो वैष्णव तो चला जाता है, लेकिन उनका पुण्य यश बल धन आयुष सब लेकर जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं विदुर जी चले गए, युद्ध में भाग नहीं लिए। अनेक प्रकार की यात्रा करने के बाद जब युद्ध समाप्त हो गया, कौरव समाप्त हो गया, केवल धृतराष्ट्र और गांधारी और गणेश चुने संजय वगैरह दो चार आदमी बचा धृतराष्ट्र के पक्ष में से, और बाद में विदुर जी आते हैं। तब युधिष्ठिर महाराज का राज्य था, तो उन्होंने देखा कि काका विदुर जी आ रहे हैं, तो वो तो भक्त थे, तो भक्त ही भगवान को पहचानते हैं और आनंदित होते हैं। चार मिले 64 खिले, चार मिले तो 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 20 करोड़। चार मिले माने दो उनका दो अपना हाथ, चार मिल गया तो 32 उनका और 32 उनका 64 खिल गया, 64 दांत 32 दांत उनका 32 दांत उनका 64 खिल गया। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 20 माने 10 उंगली उनका 10 उंगली 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो 10 करोड़ उनका 10 करोड़ उनका, ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि ये तो शुद्ध भक्त है। तो जब विदुर जी आए तो बहुत स्वागत किया उनका, बहुत स्वागत किया, बहुत सालों के बाद आ रहे हैं, बहुत उसका जुलूस निकाला और स्वागत करके उसको राजभवन में लाया गया और सुंदर आसन दिया और उसका चरण धोया, उसका स्वागत करने के बाद भोजन दिया। बाद में उनसे पूछते हैं क्या आप कहाँ कहाँ गए थे, सब कैसे हैं, आप द्वारका भी गए होंगे, भगवान कृष्ण उनकी रानी सब कैसे हैं। तो बाद में ये तो सब हो गया, बाद में विदुर जी धृतराष्ट्र को थोड़ा उपदेश देते हैं। धृतराष्ट्र को कहते हैं, जब उस समय युधिष्ठिर महाराज नहीं हुए, तब वो कहते हैं हे भाई आप किस माटी का बना हुआ है कि इतना सारा आपके ऊपर कष्ट आया, आपके 100-100 पुत्र मर गए, और आपने पांडवों के प्रति क्या क्या नहीं किया, लाक्षाग्रह में जलाने का प्रयास किया है, उनकी पत्नी द्रौपदी को नंगा करने का प्रयास किया, बेइज्जत कर दिया और पांडवों को वनवास भेज दिया, इतना कष्ट देने के बाद आप इधर घर में बैठे हैं, और ये कितने अच्छे लोग हैं ये लोग कि आपको फिर भी अपने पिता की तरह आपको पालन पोषण कर रहा है, और आप किस माटी का बना है कि आप अभी भी आपको वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ है इधर ये मानव देह में, अभी आपको तो भजन करने का समय हो गया, आप एक कुत्ते की तरह जो भीम एक टुकड़ा डालते हैं और आप खा के इधर बैठे रहे हो, जाओ और भगवान का भजन करो। और उसी समय धृतराष्ट्र को आंख खुल गया और भजन करने के लिए चले गए। तो इसी प्रकार जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान को पहचानते हैं, और शुद्ध भक्त अपना जो समय होता है वो अपना शरीर का सुख के लिए उपयोग नहीं करता है, केवल आत्मा का कल्याण हेतु अपना समय बिताता है, वो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करता है, परिश्रम नहीं करता है, केवल लौकिक सुख के लिए, इसलिए वो संतोषी होता है, संतोषी होता है, जो भी मिला इसमें अपना चला लेते हैं और अपना भजन साधन में मजबूत रहते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं महाराष्ट्र में एक ऐसे संतुष्टि भक्त जिसके जीवन में पूरा संतोष था, एकदम दरिद्र थे पति पत्नी, उसका नाम था राका और बांका, महाराष्ट्र के भक्त, विठलनाथ जी के सुंदर भक्त और नामदेव जी से दीक्षा लिया हुआ, लेकिन इतना दरिद्र कि खाने का भी उसको टाइम पे नहीं मिलता था, इतना दरिद्र। लेकिन उनके गुरु महाराज नामदेव को उन पर दया आ गया। कहे प्रभु, विठलनाथ जी को कहने लगे कि आपका इतना भजन करता है, आप तो लोगों को बहुत बहुत देते हैं, बहुत देते हैं, जिसके पास है फिर भी देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। धींगा ने दे तो दान, राका थी रूठो फरे, तारी पाहे नहीं पर दान तने कौन समझावे श्यामला। एम नकरू दीजे ज राखे छो ने आ बिचारा तारू भजन करे, तमारू भजन करे अने एने काई देता नहीं। त्यारे भगवान विठ्ठलनाथे कीधुं के हूँ देवा माटे तैयार, देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो लेने के लिए तैयार नहीं, उसको नहीं चाहिए, मैं क्या करूँ। अरे आप दिल से नहीं देते होंगे तो चलो अखतरा कर लेते हैं। तो राका बाका तो उसका तो काम था जंगल से लकड़ी लाना और मार्केट में बेचना, जो भी मिला उसमें अपना गुजारा चलाता था। तो एक बार वो लकड़ी लेने के लिए गया और इधर नामदेव और विठ्ठलनाथ जी, विठ्ठल जी आया और रास्ते से आ रहा था दोनों। तो विठ्ठल जी ने कहा कि मैं सोने का बहुत वो लेके आया हूँ, सुवर्ण का वो थैला, वो इधर रास्ते में रख देता हूँ और हम छुप जाते हैं। तो उन्होंने रास्ते में सोने का जो गड्डी था वो रख दिया और उधर से आ रहा था, पीछे उसकी पत्नी बांका थी, आगे उसका पति राका था, आ रहा था रास्ते में। तो राका ने देख लिया कि सोना है, तो उन्होंने तरत आगे पीछे देखकर एक मिट्टी का थोड़ा ऐसा ऐसा करके मिट्टी खोदा और उसमें डाट दिया और ऊपर मिट्टी लगा दिया। तुरंत बांका उसकी पत्नी आई, उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं आप, तो बोला कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ तो कर रहे हैं। तो उसने स्पष्ट बता दिया कि सोने का गठरी था ठेला, तो उसको मैं ढक रहा हूं। तो बोला क्यों, करके वो अपना नहीं है, मैं क्या करूंगा उसको, तो और इसलिए मैं ढक रहा था कि अगर मैं तो उसको छोड़ दूंगा लेकिन तेरी नजर जाएगी तो तेरा मन अगर खराब हो गया तो तू ले लेंगे, इसलिए मैंने सोचा ढक दूं तू आने से पहले ही। तो उन्होंने कहा मैं भी आपकी पत्नी हूँ, आपके साथ में रहती हूँ, मेरे को भी नहीं चाहिए। इसी प्रकार उसने नहीं लिया। तब विठ्ठल जी ने कहा देखो नामदेव, वो मैं देना चाहता हूँ फिर भी नहीं लेता है। तो विठ्ठल जी ने और भी दूसरे दिन जो जिधर लकड़ी काटने के लिए जाते थे उधर लकड़ी सब एकत्रित करके भारा बांध के हैं और चला गया। वो बोला इतना तो कम से कम सेवा कर ले, उसको इतना तो कष्ट न हो। तो वो गए उधर, लकड़ी जो लकड़ी था वो तो गट्ठी करके रख दिया था विठ्ठल जी ने। तो उन्होंने देखा कि तो लकड़ी नहीं पड़ा है, तो बांका ने कहा ये गट्ठी तो है, करके वो अपना नहीं है, वो और किसी का है, इसलिए उसमें हम नहीं ले सकते। तो अपने पास तो लकड़ी मिलेगा नहीं, क्या करेगा। तब बांका ने कहा कि पत्नी, कल हमने ये सोना देख लिया ने, केवल देखने का ये परिणाम है, देख लिया तब से लकड़ी आना बंद हो गया। देखो अगर मैं ग्रहण कर लेता तो क्या हमारा होता था। तो इसी प्रकार भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो निष्काम होते हैं, उसी को कोई भी कामना नहीं होते, वो एकदम संतुष्ट जीव होते हैं। इसलिए उसका ज्यादा समय वो कहाँ लगाते हैं, भगवान के भजन में लगाते हैं। और एक दूसरा एक मद्रास पंतक में एक सुंदर भक्त हो गया जिसका नाम था धनुर्दास, सुना होगा आप लोग ने शायद, इधर भक्त लोग बताते हैं कभी कभी। लेकिन ये अद्भुत भक्त था, आपको भी हंसी आएगी कि वो पहले भक्त नहीं था, पहले अपनी स्त्री में आसक्त था। ऐसा तो उसकी पत्नी नहीं थी लेकिन एक वेश्या को अपने घर में बिठाया था, लेकिन इंद्र इतनी सुंदर थी कि रात दिन उनके सामने ही देखते रहते थे। और वो धनवान थे, वो दरिद्र नहीं थे, इसलिए उसको काम धंधा करने का कुछ था नहीं। और कभी भी बाहर जाती है तो हाथ में छत्ता लेकर लेता है धनुर्दास और उसका मुंह देखते 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 चलता था। और वो भी वो पीछे पीछे जाता था, उसकी जो प्रेयसी थी वो आगे जाती थी। तो एक बार एक चैत्री मास में रंगनाथ जी मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव था, उस समय रामानुजाचार्य भी वहाँ थे और उसकी जो प्रेसी थी वैश्या थी उनको इच्छा हुई कि हम भी वो इसमें भाग ले जाए और कुछ देख के आ जावे। तो बोला वो तो तैयार था, हाथ में छाता लेके उसकी पत्नी निकली प्रेसी, धीरे धीरे गया। बहुत गर्मी का सीजन था, चैत्र मास था तो धूप था, पसीना छूटता था, फिर भी वो छाता और उसका मुख देखना बंद नहीं करता था। पुराने लोग जो था वो तो देखता था इसलिए उसको तो आश्रय नहीं हुआ, लेकिन जो नया लोग आते थे बहुत दूर दूर से गांव से उसको तो आश्रय, अद्भुत व्यक्ति है, ऐसा तो संसार में कभी हमने देखा नहीं। तो ऐसा करते करते वो कहाँ गए, रंगनाथ जी, और रंगनाथ उसी समय ही रामानुजाचार्य वहाँ थे तो उन्होंने भी उसको देख लिया, उसको भी आश्चर्य लगा कि ऐसा अद्भुत व्यक्ति। तो देखो भक्त कभी भी किसी के ऊपर कृपा कर देते हैं, हैं? वो भक्त की इच्छा होती है। तो रामानुजाचार्य ने देख लिया और अपने शिष्य को कहा कि आप उनको जाके बोलना मुझे मिले। तो रामानुजर का एक शिष्य था, उनके पास गया धनुर्धर दास के पास और उनको कहा कि आपको रामानुजाचार्य बुला रहे हैं। तो वो तो डर गया कि मेरी इसी प्रकार की हरकत है इसलिए मेरे को बहुत डांटेगा, है? फिर भी पहले सोचा कि नहीं जाना अच्छा है, लेकिन फिर भी कहा कि एक साधु है तो चलते हैं, एक दो थप्पड़ मारेगा तो मैं खा के आ जाऊंगा लेकिन देख लूं। तो वो गया रामानुजाचार्य के पास, जाकर रामानुजाचार्य ने कहा कि आप इतना उसके ऊपर क्यों लगाव करते हो। तो बोल वो उसने कहा बहुत सुंदर है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है इसलिए मैं उसको देखना का मन ही करता है। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि मैं उससे भी अद्भुत दृश्य आपको दिखाऊं सुंदरता। तो बोला उसको छोड़ दूंगा, तो मैं छोड़ दूंगा। तो रामानुजाचार्य ने कहा इससे हजार गुना करोड़ों गुना श्रेष्ठ अद्भुत रूप आपको दिखाना चाहता हूं। तो बोला मैं छोड़ दूंगा। रामानुजाचार्य ने कहा कि छोड़ने का नहीं, वो उसको पत्नी बना लेना, छोड़ने का नहीं, छोड़ेगा तो और दूसरी जगह पे जाके वेश्यावृत्ति ही करेगा, इसलिए उसको छोड़ना नहीं है। और भक्त कभी भी किसी को छोड़ना नहीं कहते हैं। अगर कृष्ण भक्ति में बाधा है तो अलग बात है, नहीं तो भक्त हमेशा जोड़ने के लिए ही होते हैं, जोड़ते हैं, छोड़ते तोड़ते नहीं है। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि आप शाम को आना संध्या के समय संध्या आरती में। तो जाके वो तो गया धनुर्दास अपना घर पे, अपनी जो पत्नी था उनको बातचीत सब किया। तो बोला ठीक है तो अच्छा बात है। बाद में शाम हुआ और आए, शाम होने के बाद आए और रंगनाथ जी के मंदिर में आए, रामानुजाचार्य को मिले और मिलते ही मंदिर में लेके गए और रंगनाथ जी को प्रार्थना किया रामानुजाचार्य ने कि प्रभु ये जीव का कल्याण करने के लिए ये नरक की ओर घिसते जा रहा है, उसका कल्याण करना है प्रभु, तो मेरी प्रार्थना सुनो, उसको आपका अद्भुत रूप दिखाइए जिससे वो जो नरक में जाने के लिए बच जाएगा और आपका भक्त बन सकता है। तुरंत ही शुद्ध भक्त की प्रार्थना भगवान सुनते ही हैं, तुरंत ही रघुनाथ जी ने अद्भुत दर्शन करवाया है धनुर्दास को। वो बेचैन हो गया कि ओ हो जीवन में कभी भी ऐसा दर्शन मैंने किया नहीं। तुरंत ही रामानुजाचार्य के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा, प्रभु ऐसा दर्शन मैं कभी किया नहीं, बोलो मैं क्या करूं, अभी मैं आपको शरणागत हूं। तो रामानुजाचार्य ने कहा कुछ करना नहीं है, केवल भजन करना है और अपनी जो वेश्या है उनको पत्नी बनाओ और दोनों पति पत्नी भजन में लग जाओ और महामंत्र भगवान का नाम का कीर्तन भजन करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो बाद में दोनों को रामानुजाचार्य ने दीक्षा दिया और सुंदर शुद्ध भक्त बन गए। बाद में इतना शुद्ध भक्त बन गए और रामानुजाचार्य का इतना प्रेमी भक्त बन गया कि रामानुजाचार्य के पास तो हजारों भक्त थे, उनके शिष्य थे, लेकिन जब कावेरी में स्नान करने के लिए जाते थे रामानुजाचार्य, तो उनको पकड़कर, क्योंकि वृद्धावस्था हो गया था रामानुजाचार्य का, तो उसको पकड़कर वो लेके जाते थे, रोज जाते थे आते थे, रोज जाते थे आते थे। तब जाके उनके जो दूसरे शिष्य था उनके मन में थोड़ा शंका हुआ कि हम तो कई सालों से रामानुजाचार्य का सेवा कर रहे हैं, लेकिन आजकल से आया हुआ उनके ऊपर इतना प्रेम क्यों करते हैं, हैं उनको लेके जाता हम क्या मर गए हैं, हैं उनको पकड़ कर लेकर उसको पूरा आशीर्वाद देते, तो हम तो कई सालों से उनके चरणों में उनकी सेवा करते हैं। रामानुजाचार्य को पूछा कि हम नहीं हैं और ये उसको आप लेके जाते हैं, तब रामानुजाचार्य ने कहा कि मैं समय आने पर आपको बताऊंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक भक्त जो अपना प्रेमी भक्त था उनको बुलाकर कहा कि जो अपना मेरा शिष्य ब्रह्मचारी है उनका सबका कपड़ा है ना वो उल्टा सुलटा कर दो या तो फाड़ दो थोड़ा किसी का। तो एक शिष्य ने जाके फाड़ दिया और उल्टा सुलटा कर दिया। दूसरे दिन गए सब ब्रह्मचारी घर में, उसके आश्रम में जाने के बाद देखा तो सब कपड़ा उसका इधर उधर बिखर गया है, तोड़ दिया है, तो हल्ला हो गया। रामानुजाचार्य के पास सब आए कि महाराज जी ये क्या हो रहा है, आश्रम में ऐसा ऐसा हो गया है। तो रामानुजाचार्य ने कहा शांत रहो, कोई वादा नहीं, मैं आपको नया वस्त्र दे दूंगा। तो नया दे दिया, ये हो गया। बाद में अभी उनका समाधान करना था तो रामानुजाचार्य ने वही अपना प्रिय शिष्य जो था विश्वासु शिष्य था उनको कहा कि आप एक काम करो, धनुर्दास को सत्संग में बुला लो। रात का समय था, धनुर्दास को सत्संग में बुलाया और उनके दो तीन शिष्य को बोला कि आप उनके घर में जाओ और उसका पत्नी का गहना है ना वो चुरा लो। रामानुजाचार्य ने आदेश दिया तो दो चार शिष्य उनका गया उसकी पत्नी को गहना चुराने के लिए, क्योंकि धनुर्दास तो सत्संग में गया था इसलिए कीवड़ खुला था और वो भी जागती थी उसकी पत्नी हेमा, वो जागती थी। तो ये लोग चोर लोग आए, चोर नहीं मतलब ये उसका रामानुजाचार्य का शिष्य लोग आए और उन्होंने देख लिया कि कोई आए हैं तो वो खराटे करने लगी उनकी पत्नी, तो उसको लगा कि तो सोई हुई है। तो उन्होंने एक करवट बदल के ऐसा ही सोई थी तो ऊपर ऊपर से जो भी गहना था वो चुरा लिया। और बाद में पत्नी ने करवट बदला तो उसने ये रामानुजाचार्य के शिष्य ने लगा कि ये तो उठ जाग गई, भागो भागो, भाग के चला गया आश्रम में, गहना दे दिया। और बाद में उधर से सत्संग समाप्त होने के बाद वो धनुर्धर भी उसके घर पे आया और वो तो जागती थी पत्नी, तो उन्होंने कहा कि कोई भक्त आए थे आश्रम में, कुछ जरूरी होगा जो भी है, तो मैंने गहने लेने दिया, लेकिन मैंने जब करवट बदला तो वो तो भाग गए हैं। तब धनुर्दास उसके ऊपर बहुत डांटा कि भाग जा इधर से, आप साधु का सेवा नहीं कर पाया, आपने करवट बदला ही क्यों। तो उसकी पत्नी भी कम नहीं थी, वो भी भगवान की शुद्ध भक्त बन गई थी, उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि एक साइड का तो ले लिया, अभी दूसरा साइड का भी देना चाहती थी इसलिए मैंने करवट बदला। तब जाके ये जो सभी गहने थे वो वापस दिया और उनके शिष्य को बुलाकर कहा कि देखो आप में और इनमें कितना तफावत है, आप केवल अपनी लंगोटी के लिए कितना बुमा बुम करने लगे और अपना ये तो गहना देने के लिए राजी हो गया है? उसी प्रकार जब जनक महाराज की सभा में, जनक महाराज का गुरु अष्टावक्र था तो आए, तो उनकी सभा में बहुत पंडित लोग थे तो अष्टावक्र जी थे वो तो आठ प्रकार से टेढ़े थे, तो आकर पंडित लोग हंसने लगे, बहुत हंसने लगे, खड़खड़ाहट हंसने लगे। तो तुरंत ही अष्टावक्र जी उधर से निकल गए, तो पीछे राजा गए और कहा कि आप क्यों भाग गए। तब अष्टावक्र ने कहा कि मैंने सोचा था कि आपके राज्य में पंडित ही होगा, लेकिन ये तो चमार है, क्यों? कि वो तो चमड़ा देखता है, अंदर हृदय नहीं देखने वाला है, ये लोग चमार है, ये पंडित नहीं है। तो अष्टावक्र जी का शुद्ध भक्त था वो अपना ये जनक महाराज। तो जब तक जब ये सत्संग करने के लिए अष्टावक्र जी उसके गुरु बैठते थे, जब तक जनक महाराज नहीं आते थे तब तक वो सत्संग चालू नहीं करते थे। तब उनके भी शिष्यों ने लगा कि राजा के ये धनवान है, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि वो आने के बाद ही सत्संग चालू करता है, हम तो बैठ जाते हैं, वो तो 5-10 मिनट के बाद आता है, फिर भी वो हमको रुकाता क्यों है, सत्संग चालू क्यों नहीं करता है। तो उसी समय अष्टावक्र ने भी एक चमत्कार किया। दूसरे तीसरे दिन जनक महाराज आए, सत्संग चालू हुआ। पहले तो उनके आश्रम में जो ब्रह्मचारी जो बोल रहे थे उनके आश्रम में इसी प्रकार कपड़ा को इधर उधर, किसी का लंगोटी किसी का लोटा इधर उधर कर दिया, तब उधर हल्ला बोल हो गया है। गुरु महाराज ने पूछा क्या हो गया? अरे कि कोई ऐसा बदमाश आया है, इधर से उधर कर दिया, तो झगड़ा पानी हो गया। तब जाके एक बार अपना जनक महाराज सत्संग में बैठे थे और आए दौड़ते दौड़ते एक दो तीन लोग कि जनक महाराज आपका राज में आग लग गया है, आपका महल में आग लग गया। तो जनक महाराज बोले, अष्टावक्र रुक गए सत्संग करते हुए, तो जनक महाराज ने कहा चालू रखो सत्संग, चालू रखो। बोला आपका महल में आग लग गई, आपको जाना नहीं? अरे लगने दो, जो भी लगना है, ये सत्संग कहाँ मिलने वाला है। तो इसी प्रकार जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उसको कोई भौतिक जो चीज है उसमें आसक्ति नहीं है। और एक रामानुजाचार्य का दो भक्त थे, उसकी भी कथा सुन लेते हैं। एक गरीब था और एक अमीर था। रामानुजाचार्य को दोनों भक्त का आमंत्रण आया कि आप हमारे घर पे आइए और हमारा घर को पावन कीजिए, कृतार्थ कीजिए, सत्संग करिए, हमको आपका दर्शन का लाभ दीजिए। एक बड़े राजा थे और एक एकदम गरीब, गरीब माने खाना पीना का भी प्रॉब्लम है, ऐसा भक्त। अबे रामानुजाचार्य विचार करने लगे मैं पहले कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने एक अपने अमुक शिष्य को भेजा कि आप राजा के पास जाओ, क्योंकि उसने कहा है कि मेरे को आने के लिए, तो वो किस प्रकार का तैयारी कर रहा है वो थोड़ा देख के आ जाओ। तो दो चार भक्त गए राजा के पास। पहुँचने के बाद सब तैयारी चल रहा था, ताबड़तोड़ राजा था वो बैठे थे और उनके नौकर चाकर सब इधर से उधर से, क्योंकि मारा जाने वाला है इसलिए एकदम तैयारी चल रहा था। लेकिन चार पांच जो उसके शिष्य गए थे, भक्त गए थे, उनको पानी का भी पूछा नहीं। तब जाके वो लोग आए रामानुजाचार्य के पास और उन्होंने कहा कि आप गए क्या चल रहा है? तो वो बहुत बहुत बड़ा तैयारी कर रहा है। लेकिन तो रामानुजाचार्य ने कहा आपका स्वागत में क्या किया? तो बोला इतना बिजी था है कि उसका लोग इधर से उधर सब कार्यक्रम के जुटे हुए थे, इसलिए राजा मन में भी नहीं था, तो हमको पानी दिया नहीं, तो हम भी कुछ इच्छा भी नहीं था। तो रामानुजाचार्य ने सोचा कि अभी उसके पास नहीं जाना है, पहले जो गरीब भक्त है मेरा शिष्य उधर जाना है। तब रामानुजाचार्य अपनी मंडली को लेकर गए, जो उसका गरीब भक्त शिष्य था उनके पास गए। खिड़की बंद था, रामानुजाचार्य गए, उसका पति कुछ मांगने के लिए गया क्योंकि गुरु महाराज आने वाला है, कुछ शिष्य साथ में आने वाला है, तो भोजन की व्यवस्था करने के लिए कुछ कहे, कुछ मांगने के लिए कहाँ भी। तो उसकी पत्नी था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। उसकी पत्नी एक कोठरी आती है उसके अंदर छुपी थी। रामानुजाचार्य ने खिड़की खटखटाया, खोलिए खोलिए, अंदर से आवाज आया, गुरुजी आप आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन मेरी स्थिति नहीं है, मैं खिड़की खोलने के लिए आ सकता हूँ। रामानुजाचार्य समझ गए, तो उन्होंने अपनी उत्तरी दे दिया ऊपर से और वो लपेट के माता आई खोलने के लिए। रामानुजाचार्य आए बैठे, बाद में उनका अभी तो घर में कुछ खाने के लिए, खुद के खाने के लिए नहीं, और रामानुजाचार्य के शिष्य सब आए हैं, उनका अभी साधु आए हैं, तो उनका व्यवस्था तो करना ही है और तत्काल करना है। तब उनकी जो भक्त थी उन्होंने सोचा कि मैं कहीं जाके कुछ लाऊं गुरु महाराज के लिए, उनके भक्त के लिए। तो उसको याद आ गया कि यही गांव में एक नगर सेठ जो है वो मेरी पर बुरी दृष्टि रखते हैं। तो उसके पास गए, वो बोले कि मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु भाई सब भक्त लोग आए हैं, तो उनको खाना पानी के लिए मेरे को सामान चाहिए, और आप मुझे बहुत बार बोल चुके थे कि आप एक गरीब ब्राह्मण के घर में क्या करते हैं, आ जाओ मेरे साथ में, मैं आपको अच्छी तरह से रानी की तरह रख दूंगा, तो आपकी इच्छा जानकर मैं आई हूँ, मुझे सामान दे दो, मैं मेरे गुरु महाराज को प्रसन्न कर लूँ, बाद में आके आपको खुश करूँगी। तो वो सेठ तो बहुत खुश हो गया, जितना चाहे इतना ले लो। ये भक्त माताजी थी, वो पूरा जो जितना सामान लगेगा इतना लेकर आई, ताबड़तोब बनाई और अपने रामानुजाचार्य उनके शिष्य भक्तों को बहुत सुंदरता से, अच्छी तरह से, प्रेम से उनको खिलाया। तब जाके उनका पति आया, लेकिन खाली आता है, कुछ है नहीं। तो उसने सोचा कि ये लोग तो खा के बैठ गए हैं, खा चुके हैं, तो आपने कैसे बंदोबस्त किया। लेकिन रामानुजाचार्य त्रिकालज्ञ है, वो सब जानते हैं कि उसके पास खाने पीने का सामान नहीं है और कहाँ से आया। तो रामानुजाचार्य ने उनकी जो शिष्या थी माताजी, उनको कहा कि मैं जानता हूँ कि आपने ये बंदोबस्त कहाँ से कैसे किया, एक काम करना, जब अब कल उनके पास जाएगी तो ये मैं प्रसाद देता हूँ, लेकर जाना। और वो माताजी दूसरे दिन नगर सेठ के पास गई, क्योंकि इधर तो रामानुजाचार्य तो चल गए और सब हो गया, दूसरे दिन गए और नगर सेठ तो एकदम खुश हो गए हैं। और आकर जो माताजी थी उन्होंने कहा कि सब आपका जो मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन करूंगी, लेकिन ये प्रसाद पहले ले लो। बाद में उन्होंने प्रसाद लिया, जब रामानुजाचार्य का दिया हुआ प्रसाद जब अंदर हृदय के अंदर गया तो सभी कलमश था दूर हो गया, काम वासना दूर हो गई और उसके हृदय में एक चमत्कार हो गया और भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया और तुरंत ही उसकी बुद्धि फ्रेश शुद्ध हो गई, भक्तिमय हो गई। तुरंत ही ये माता के चरणों में गिर गए कि माँ कहने लगी, माँ मेरा जो सोच था वो अलग था और प्रसाद खाने के बाद मेरा हृदय शुद्ध हो गया, परिवर्तन हो गया, इसलिए हे माता अभी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके पास जो मांगा था उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तब माता जी ने उसको, बाद में कहते हैं कि वो नगर सेठ इतना शुद्ध भक्त बन गया और जिस इसके पास जो भी सामान था पूरा प्रसाद भक्तों को प्रसाद या तो लोग गरीब लोगों में बांट दिया और सुंदर रामानुजाचार्य का परम भक्त बन गया। तो इसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, लेकिन बाहर से कंगाल दिखे अंदर माला माल, बाहर से कंगाल लगते हैं लेकिन अंदर से माला माल होते हैं। इसलिए कहते हैं कि भक्त का कभी नाती जाती नहीं देखना है। पीपल कोई पक्षी का टट्टी से उगता है फिर भी पवित्र माना जाता है। गाय का दूध जो बछड़ा पीते हैं तो उसका मुंह का जो फैन होता है वो भी पवित्र माना, अशुद्ध होने के बाद भी पवित्र माना जाता है। और जो भी व्यक्ति ऐसे भक्त का ऐसा उसका कूल ऐसा कुछ देख के उसका अपमान करता है तो उनको नरक में जाना पड़ता है, उनको पाप लगता है, अपराध लगता है। तो इसी प्रकार इस श्लोक में बताया गया है कि जब बादल उगते हैं, बादल आते हैं और मोर नाचते हैं, उसी प्रकार कोई गृहस्थ के घर में कोई शुद्ध भक्त जाता है तो भक्त भी नाचने लगता है, आनंदित हो जाता है। तो हमको भी इसी प्रकार भक्त बनना है और साधु सेवा करना है। साधु हमको कुछ देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं आते हैं। ये भक्त को तो पता ही होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी भक्त बनने के बाद भी हमारे मन में ऐसा
हो सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।